भजन संहिता 90, भजन 90 मूसा का भजन है। मूसा भी एक लेखक था जिसने भजन और गीत लिखे, और ये भजन उनमें से एक है। भजन 90 पद 1 और 2, हे प्रभु या यहोवा, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। मूसा परमेश्वर का कभी न बदलने वाला चरित्र बताता है। संसार के अस्तित्व से पहले अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादिकाल इब्रानी भाषा का एक रोचक शब्द है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है विलुप्त होने वाला बिंदु। इसे समझने के लिए जितने अतीत में आप सोच सकते हैं सोचो। सूर्य लगभग 20 करोड़ टन व्यापक रूप से प्रति सेकंड की दर से लुप्त हो रहा है। इस तरह 10 अरब वर्षों बाद सूर्य इस लायक नहीं रह जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन को संभाल सके। इसलिए यदि आप किसी बात की चिंता करना चाहते हैं तो इस बारे में सोचिए, क्योंकि सूर्य अपने पिंड की इतनी राशि खो रहा है। सूर्य सदा बना नहीं रह सकता। यदि इतनी राशि सूर्य में वापस डालते रहे तो एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड उसमें चला जाएगा। इसलिए सूर्य आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है। हर्शेल जीन्स नामक एक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी एक विशाल घड़ी है जिसकी चाबी भरकर छोड़ दी गई है, और धीरे धीरे ये चाबी खुलती जा रही है। भौतिक संसार की धीरे धीरे समाप्ति को देखते हुए ये सिद्धांत उचित ही लगता है। उस समय के बारे में सोचें जब पृथ्वी नहीं थी। जितना पीछे तक सोच सकते हैं सोचे, और जब आप अपने मन में सोचेंगे एक स्थिति ऐसी आएगी जिसे विलोपन या विपरीत भाव में अनस्तित्व की स्थिति कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप सोचने के लिए कुछ नहीं रहा, मानो कि अनादिकाल कुछ भी नहीं था। यह है अनादिकाल शब्द का इब्रानी भावार्थ। इसे हम कह सकते हैं शून्य से पूर्व। अब अपने मन में आगे की सोचें, जहां तक हो सकता है, अर्थात अनंत काल के बारे में सोचें। कहा जाता है एक छोटी चिड़िया प्रतिदिन प्रशांत महासागर के पानी की एक बूंद ले जाकर अटलांटिक महासागर में डाले तो जिस दिन वो प्रशांत महासागर की अंतिम बूंद अपनी चोंच में लेगी वो दिन अनंत काल का पहला दिन होगा। अब इस अनंत काल के अंत की कल्पना कीजिए। सब कुछ विलुप्त हो जाएगा, सब कुछ विलोप हो जाएगा। इब्रानी शब्द का अर्थ यही होता है। वास्तव में शाब्दिक इतना सोचना कि मन अंतिम विलोप बिंदु पर पहुंच जाए, यही भजनकार कहता है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। इब्रानी भाषा में एक और इससे भी प्रभावी शब्द है जो विलुप्त बिंदु के भी पार है। इब्रानी भाषा में यही अनंत काल का भावार्थ है, परंतु विलोप होने वाला बिंदु मात्र ही मेरे समझने के लिए काफी है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। भजन 90 पद 3 और 4, तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसा है जैसे कल का दिन जो बीत गया, वो रात का एक पहर। यहां समय का संबंध देखिए, परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन के समान है। पत्रस जब यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में कहता है, तब वो कहता है, दूसरा पत्रस 3:3-4, अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। परमेश्वर नहीं आएगा, वो कहां है, उसकी प्रतिज्ञा कहां गई, वो यहां नहीं है। पत्रस कहता है, इस बात से अनजान मत रहो कि परमेश्वर के यहां 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हम समय के अनुसार सोचते हैं, हम सदा एक निश्चित समय के बारे में सोचते हैं, यहां आरंभ है और यहां अंत है, यहां मेरा जन्मदिन है, यहां मेरा मरण दिन है। हमने समय को निर्धारित कर रखा है, क्योंकि हम भौतिक तत्वों से जुड़े हैं। यदि हम भौतिक न होते तो हम भी समय से बंधे न होते। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार वास्तव में यदि भौतिक अवस्था न हो तो समय है ही नहीं। यदि आपकी चाल बहुत ही तेज हो तो समय को बढ़ा सकते हैं। उसके सिद्धांत के अनुसार यदि आप अपनी रफ्तार प्रकाश के समान बढ़ा सकते हैं तो समय रुक जाएगा। यदि हम प्रकाश की गति से पड़ोसी आकाश गंगा तक जाकर आ जाएं, तो लगभग 9 वर्ष लगेगा। इस यात्रा में आपकी आयु तो वही रहेगी, परंतु अन्य सभी लोग आपसे 9 साल बड़े हो जाएंगे। अब यदि हम सबसे दूर की आकाश गंगा तक इसी रफ्तार से जाकर आ जाएं, तो वो यात्रा 30,00,000 वर्षों की होगी और यहां पृथ्वी पर सब कुछ बदल जाएगा। आप अपने मित्रों को खोजेंगे तो उन्हें नहीं पाएंगे। इस तेज गति से चलने का अर्थ है कि आप ऊर्जा में बदल जाते हैं और भौतिक नहीं रह जाते। इसे कहते हैं समय का थम जाना। हम आइंस्टीन के सिद्धांत को किसी भी तरह प्रमाणित नहीं कर सकते, परंतु हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि वो एक अति बुद्धिमान मनुष्य था। ये बड़ी विचित्र बात है कि बाइबल इस विषय पर चर्चा करती है जहां तक परमेश्वर का संबंध है। 1000 वर्ष मेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया। पत्रस भी यही कहता है, परमेश्वर के यहां 1000 वर्ष एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है अगर आप इसे होशे की पुस्तक के संदर्भ में देखेंगे। वो इसराइल के विषय में कहता है कि वे 2 वर्ष के लिए तितर बितर किए जाएंगे। वो कहता है, और तीसरे वर्ष मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा, इसराइली अपने देश में वास करेंगे। अथवा यहां उसने 2 दिनों में बल्कि तीसरे दिन दर्शाते हुए लिखा है, होशे 6:2, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। निश्चय ही इसराइल नष्ट हो गया और इसराइलियों को करीब 2000 वर्षों तक अपने देश से बाहर रहना पड़ा, और अब उन्हें परमेश्वर के द्वारा उठाया गया है। जब आप कहते हैं, परंतु परमेश्वर का आना लंबे समय से प्रतीक्षा में है, ये तो कुछ दिन की बात है। भजन 90:5-6, तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वो भोर को फूलती और बढ़ती है और सांस तक कटकर मुरझा जाती है। इसलिए जीवन सिर्फ अस्थाई है। भजन 90 पद 7 से लेकर 9 तक, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जल जलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। यहां समझने में कठिनाई है कि हम समय के उस बंधन से बाहर हैं, इसलिए जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ असमंजस हो जाता है, जिसका ना आदि है ना अनंत है, जहां ना भूत है ना भविष्य है, परंतु सब कुछ वर्तमान है, क्योंकि अब आप समय के बंधन से स्वतंत्र हो गए हैं। जब हम समय में बंधे होते हैं तब हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल द्वारा समय को पहचानते हैं, परंतु समय के बंधन से मुक्त हो जाने पर भूत और भविष्य कुछ नहीं रह जाता है, सब कुछ वर्तमान में होता है। सभा उपदेशक की पुस्तक के लेखक यही बताने का प्रयत्न करते हुए हमें और भी उलझन में डाल देता है। हमारी बुद्धि इसे समझ नहीं सकती, ये हमें उलझन में डाल देता है, परंतु ये भूतकाल है, वो कहता है जो इस समय है, वो जो होने वाला है वो हो चुका है। परमेश्वर उसे आदेश देता है जो बीत गया, अतः इसका हल खोज ले तो अनंत काल आपकी समझ में आ जाएगा कि सब कुछ वर्तमान है। वास्तव में हमारे वर्तमान जीवन एक ऐसी कहानी की तरह है जो पहले कही जा चुकी है। जहां तक परमेश्वर की बात है, हमारा जीवन एक प्रकार से कहानी का दोहराया जाना है, क्योंकि परमेश्वर समय के दायरे से बाहर है, वो पूरी कहानी को एक साथ देख सकता है। जैसे याकूब कहता है, तू सारी बातें आरंभ से अंत तक जानता है, क्योंकि परमेश्वर समय के दायरे से बाहर है, इसलिए जब परमेश्वर नीचे देखता है तब वो पूरी तस्वीर देखता है और हम उसे एक एक दिन करके देखते हैं, आज, कल और परसों की तुलना में। जहां तक परमेश्वर का संबंध है, परमेश्वर आदि से अंत तक देखता है। हम मानो दोबारा दौड़ रहे हैं, वो तो पहले ही देख चुका है, वो आरंभ से अंत तक जानता है। समय के दायरे से बाहर आने के अद्भुत लाभ होंगे और हम परमेश्वर की तरह सब कुछ देखेंगे। योहन्ना को यह अनुभव हुआ था जब उसने प्रकाशित वाक्य के दृश्य को देखा था। उसने कहा, मैं परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। परमेश्वर उसे उस समय में ले गया जो हमारे समय के पार था, और प्रभु ने योहन्ना को वो दृश्य दिखाए जो पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के थे। कलीसिया के उठाए जाने के बाद पृथ्वी महाक्लेश के समय से गुजरेगी, और पृथ्वी पर क्या क्या होगा। योहन्ना ने नीचे झांक कर पृथ्वी के भविष्य को देखा और उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा। ऐसा अभी तक घटित नहीं हुआ, अब तक तो हुआ नहीं था, परंतु भविष्य में अवश्य होगा। परमेश्वर ने उसे समय के दायरे से बाहर निकाला था, इसलिए परमेश्वर जो समय के बंधन से बाहर है, वो आपके जीवन का अंत और पूरी कहानी को जानता है। आप अपना जीवन एक कहानी की तरह व्यतीत करते हैं जो पहले कही जा चुकी है। ये खेल का पुनः प्रसारण देखने के समान है। परमेश्वर आपके जीवन को इस प्रकार देखता है, इसी कारण वो आपके जीवन की एक एक घटना को जानता है, इसलिए वो पहले से ही सब कुछ जानता है। रोमियो 8 अध्याय 29 पद, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी। इसलिए परमेश्वर ने आपको मसीह में चुन लिया है, आपके जन्म लेने के बाद नहीं, उसने संसार के नींव डालने से पहले आपको चुन लिया है, क्योंकि वो समय से बाहर है। वो नीचे देखता है तो अंत भी उसके सामने होता है, इसलिए वो आपके जीवन और आपके जीवन का अंत देख सकता है, क्योंकि वो समय की सीमा से बाहर है। और अपनी इस विशेषता के कारण वो अपना उत्तम चुनाव करता है। उसने मुझे चुना, क्या ये सीधी और साफ बात नहीं है? ऐसी बुद्धि रखकर वो पराजित होने वाले को कैसे चुन सकता है? इसलिए सच ये है कि यदि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, तो मेरा नाम अपने आप ही विजेताओं की सूची में आ जाता, और जो कुछ उसने मुझमें आरंभ से किया है उसे वही समाप्त करेगा। परमेश्वर द्वारा हमारे जीवन का चुनाव पहले से ही हो गया है, और वो हमारा भाग्य विधाता है। इस बात को समझने में ये कठिनाई होती है, हमारी सोच सीमित है और हम समय के संदर्भ में ही सोचते हैं। यही हमें समझने में कठिनाई उत्पन्न करता है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे चुना। उसने मुझे चुना, बस यही ठीक है। ओह, वो मुझे चुनना चाहता है। मैं कोई विवाद न करूंगा, मैं केवल आनंद करूंगा। इसलिए मैं अपना जीवन इस कहानी की तरह व्यतीत करता हूं जो पहले ही बताई जा चुकी है। परमेश्वर उसका अंत जानता है, वो अंतिम अध्याय तक जानता है। मैं नहीं जानता हूं कि ये मेरी कहानी है, परंतु सत्य तो ये है कि जिस जीवन का मैं अनुभव कर रहा हूं उसे परमेश्वर पहले से ही जानता है। जो मेरे लिए नया है उसे परमेश्वर पहले ही जानता है। मैं कोई नई खोज नहीं कर रहा हूं जिसे परमेश्वर नहीं जानता, वो तो पहले ही से सब कुछ जानता है। मेरे लिए तो अब भविष्य खुल रहा है, इसलिए मैं मूसा के इस विचार को पसंद करता हूं जो मूसा ने परमेश्वर के अनंत स्वभाव पर व्यक्त किए। इसलिए हमारा जीवन उस कहानी की तरह है जो लिखी जा चुकी है और अब चलचित्र के रूप में चल रही है। भजन 90 पद 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं। मैं यहां समय के दायरे में हूं और हो सकता है इसी समय के दायरे में 70 वर्ष बिताऊं। पद 10 में आगे लिखा है, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे, भजन 90 पद 11 से लेकर 12 तक, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। मैं तो समय की सीमा से बंधा हूं प्रभु, इसलिए मुझे अपने दिन गिनने सिखा, जिससे कि मैं अपने समय का सर्वोत्तम सदुपयोग करूं। परमेश्वर ने मुझे सीमित समय दिया है। परमेश्वर मेरे दिनों को जानता है कि कब मेरी आत्मा और प्राण इस शरीर को छोड़ देंगे। वो जानता है मैं कब इस शरीर को छोड़ूंगा। वो तो मेरी देह त्याग का कारण भी जानता है। परमेश्वर पृथ्वी के एक एक घंटे और तारीखों को जानता है। मैं उन्हें नहीं जानता, मैं तो केवल उनमें प्रवेश करता जाता हूं। मैं तो अपने जीवन की घटनाओं को एक एक करके देखता हूं, परंतु परमेश्वर ने तो उन घटनाओं का निर्धारण किया है, अतः वो उन्हें पहले से ही जानता है। हो सकता है कि मेरी आशा से पहले कुछ हो जाए, या मैं वहां तक पहुंच भी ना पाऊं। मेरा अपना विचार तो ये है कि यदि मेरी आशा पूरी ना हो तो भी मैंने कुछ खोया नहीं है। परंतु निश्चय ही प्रभु मुझे प्रत्येक दिन का उपयोग बुद्धिमानी से करना सिखाए। प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ प्रदान कर, क्योंकि मैं नहीं जानता कि प्रभु को देखने के दिन का सौभाग्य मुझे कब प्राप्त हो जाए। हमने टेलीविजन के सामने कितना बहुमूल्य समय बर्बाद किया है। टेलीविजन एक बुराई का यंत्र है जो आपके बहुमूल्य समय को चुराने के लिए बनाया गया है। वो मनुष्य को अंदर से ही खोखला कर देता है, क्योंकि वह उनके मन को खाली बातों से भर देता है। प्रभु मुझे अपने दिन गिनना सिखा कि मैं अपना मन बुद्धि की बातों में लगाऊं और अपने इस समय का उपयोग बुद्धिमानी से करूं। परमेश्वर मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। भजन 90 पद 12 से 14 तक। कि हम बुद्धिमान हो जाए, हे यहोवा लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने कितने दिन मुझे दिए हैं। मैं खुशी का जीवन जीना चाहता हूं, आनंदित और प्रसन्न रहकर। भजन 90 पद 15 से लेकर 16 तक। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। मेरे विचार में मूसा की प्रार्थना अति महान है। भजन 90 पद 17। और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। प्रार्थना, परमेश्वर की मनोरथा हम पर प्रकट हो। हम बचपन में एक गीत गाते थे, काश यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। प्रभु हमारे परमेश्वर की सुंदरता हम पर हो, उसकी सुंदरता हमारे कार्यों और जीवनों से प्रकट हो। प्रभु की सुंदरता इस जरूरतमंद संसार के लिए मुझ में दिखाई दे। प्रभु आपके साथ हो और आपकी देखभाल और सहायता करे कि हम अपने दिन गिने और अपने मन को बुद्धि की ओर लगाए। ये समय जो उसने हमें दिया है उसकी सेवा में लगाएं और अपना धन स्वर्ग में जमा करें। प्रभु की आत्मा आपके हृदय में काम करे और आपके जीवन को यीशु के जीवन के समरूप बनाए, ताकि उसकी सुंदरता आपके चाल चलन और कार्यों में दूसरों के द्वारा देखी जा सके। यीशु के नाम में आमीन।